ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। केंद्र ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए भंडारण की सीमा संशोधित की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में बताया कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं भंडारण सीमा अब 2000 मीट्रिक टन होगी। ये सीमा पहले 3000 मीट्रिक टन थी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेता 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान में 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस साल 24 जून को गेहूं भंडारण सीमा लागू की थी। ये रोक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने बताया कि सभी गेहूं भंडारण से जुड़ी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और इसे मंजूरी मिली। इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य अपनी आधिकारिक भाषा का विश्वभर में प्रचार प्रसार करना है। इस अवसर पर आज गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1747 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से 1561 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे कल मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल कॉलेज में एक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के 434 आईटीआई में संविधान मंदिरों का भी उद्घाटन करेंगे। ये संविधान मंदिर संविधान की शिक्षा और भारत रत्न डॉ बीआर आम्बेडकर के विचारों के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उपराष्ट्रपति नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में एक समारोह में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त हस्तांतरित करेंगे। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम सिंगल क्लिक के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में कल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री येचुरी का गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर आज पार्टी मुख्यालय एके गोपालन भवन नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जनता के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि करने के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया जाएगा, जहां इनकी इच्छा के अनुसार इसे चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया जाएगा। डॉ जयशंकर ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फाइलेमन येंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर बधाई दी। डॉ जयशंकर ने कहा कि महासभा का नेतृत्व विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए नेतृत्व में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। म्यांमार में तूफान यागी के कारण आई बाढ़ में 33 लोगों की मौत हो गई और 2,30,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। म्यांमार की सेना ने कहा है कि देशभर में कुल 34 टाउनशिप बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भारत की तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के अदनान मौलाना और रिंदा सारी जमील की जोड़ी से होगा। हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत आज चीन में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने 5वें और अंतिम पूल मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।